चर्चा का विषय है।
ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 विश्व के तकनीकी और डिजिटल भविष्य में भारत की अहम भूमिका पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रौनेन्द्र सिंह और प्रसून श्रीवास्तव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
कभी दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ एक विचार ही काफी होता है, एक विचार जो तकनीक में बदलता है, तकनीक जो नवाचार बनती है और नवाचार जो भविष्य लिख देता है। आज दुनिया एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मशीनों की बुद्धिमता नहीं बल्कि मानव सभ्यता की अगली छलांग बन चुका है। और इस नई डिजिटल क्रांति के केंद्र में खड़ा है एक देश, विचारों की ऊर्जा, नवाचार की शक्ति और युवा प्रतिभा के संकल्प के साथ। जी हाँ, भारत। यहीं से उठ रही है वो आवाज जो कहती है तकनीक केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता के बेहतर भविष्य का रास्ता है। और इसी नजरिए और इसी संकल्प के साथ दुनिया के नीति निर्माता, तकनीक विशेषज्ञ, स्टार्टअप लीडर्स और उद्योग जगत के दिग्गज एक मंच पर एकत्र हुए। ये मंच था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का, जहां विचार मिले विजन से और विजन से आकार ले रहा है कल का डिजिटल संसार। आइए इस विशेष रेडियो कार्यक्रम चर्चा का विषय है में हम जानेंगे कि कैसे भारत की एआई पहल दुनिया के डिजिटल भविष्य को नई दिशा दे रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ दो टेक एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में रौनेन्द्र सिंह हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसून श्रीवास्तव भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद आनंद।
धन्यवाद आनंद।
सबसे पहले रौनेन्द्र जी, आपसे शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो एआई इम्पैक्ट समिट भारत में आयोजित हुआ, क्या भारत के डिजिटल नेतृत्व की दिशा में इसे आप बड़ा कदम मानते हैं और वो भी जब हम ग्लोबल साउथ को लीड करने की सोच रहे हैं?
सबसे पहली बात यह है कि जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो हाल ही में भारत मंडपम में कंक्लूड हुआ दिल्ली में, वो विश्व में अभी तक का सबसे बड़ा समिट था। इससे पहले तीन जगह हुई जहां पे जो यूके, यूनाइटेड किंगडम है, साउथ कोरिया और सबसे लास्ट था पेरिस। तो उन तीनों में से सबसे बड़ा समिट ये हमारे इंडिया में हुआ था और जिस तरह के फुटफॉल्स और एग्जीबिशन लगे थे वो भी सबसे बड़ी मानी गई इस समिट में जो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और लगभग 10 लाख लोगों के फुटफॉल्स थे इस कड़ी में। सो ऐसे ही हम लोग इतने सारे इस समिट में थे, जैसे फाउंडेशन पिलर्स जो हमारे सात सूत्र के हिसाब से माध्यम से रखा गया था, जो कि हमारे पीपल, प्लानेट एंड प्रोग्रेस, यानी जनता, हमारे ग्रह और यू नो प्रगति के थीम पे रखा गया, और उसी मुताबिक जो एग्जीबिशन जो लगे थे, जो पवेलियंस थे 10 पवेलियंस, उसमें भी सारे इसी थीम में लगे थे कि आगे जाके हमारे यू नो एआई जो है वो हमारे ह्यूमन लाइफ में और देश में और प्रगति में और हमारे प्लानेट में क्या क्या फर्क ला सकते हैं। तो इन्हीं थीम के साथ जो भी जो हमारे बूथ्स लगे थे वो उसी हिसाब से लगे थे कि हम कैसे लीड कर सकते हैं, और भारत एक बहुत ही बड़ी मकाम पे अभी ये सब अचीव करने के लिए। और एआई में भी हम लोग देखिए, टेक्नोलॉजी में तो ऑलरेडी हम लोग नंबर वन है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर में, जो कि आज के तारीख में हम लोग अराउंड 300 बिलियन का हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। सो अभी जो बचा है सिर्फ हार्डवेयर का बचा है और अभी एआई इज ऑल्सो कमिंग इन। सो हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर में हम लोग डेवलप हुए हैं वैसे ही हम लोग एआई टेक्नोलॉजी में भी डेवलप हों।
जी हाँ, और इस एआई इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन प्रस्तुत किया जिसका नाम था मानव। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस मानव विजन पर क्या कुछ कहा।
आज न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूँ। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है M मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एंड नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं मल्टीप्लायर बने। बी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफायबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा।
प्रसून जी, प्रधानमंत्री को हम सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि 21वीं सदी में मानव विजन के लिए काफी अहम होगा। इस एआई इम्पैक्ट समिट में कई तरह के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, आपके नजरिए से वो कौन सी एक या दो बड़ी घोषणाएं हैं जो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले समय में बहुत हद तक बदलने वाली हैं?
सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला मानव का विजन दिया, उसमें उन्होंने जिसका डेटा उसका अधिकार और नेशनल सॉवरेनिटी इन सबकी बात की। और इसके बाद भी जहां तक हम बात करें, सबसे बड़ा तो हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन था जिसको 91 एंटिटीज ने साइन किया, जिसमें से 89 राष्ट्र ने साइन किया और दो संस्थाओं ने साइन किया जिसमें EU और IFAD है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन लोगों ने साइन किया। ये जो अगर हम कंपेयर करें कि पिछली जो समिट है वो कितना साइन किया था, तो जैसे ब्लेचली पार्क समिट जो UK में हुआ था उसमें 28 देशों ने समझौते को साइन किया था और EU ने साइन किया था। साउथ कोरिया में जो हुआ सियोल में उसको 20 कंट्रीज ने साइन किया था, यूरोपियन यूनियन ने साइन किया था, UN ने साइन किया था और फ्रांस जो पिछला था उसको 60 कंट्री ने साइन किया था। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं स्केल किस तरह से गई और हमने सबसे बड़ी रजामंदी जो ली, सारे पॉइंट तो अच्छे थे, मानवता की तरफ थे, लेकिन बहुत सारे लोग अपने रिसोर्स को पकड़ के रखना चाहते हैं कि हम अपने जो टेक्नोलॉजी है वो साझा नहीं करना चाहते हैं। तो हमने वहां एक ब्रेक थ्रू पाया डेमोक्रेटाइजिंग AI रिसोर्सेज के नाम पर। आप देखिए ये इतना बड़ा समझौता था, इसमें चीन अमेरिका जो प्रतिद्वंदी है उन्होंने भी भारत का साथ दिया और भारत के इस समझौते को साइन किया, तो हमें ये दिखाता है कि हमारी लीडरशिप आती है। उसके बाद अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कमिटमेंट भी आए, जो कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट और अपने भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो $250 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट आए हैं AI समिट में और $20 बिलियन आए हैं भारत में डीप टेक के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे ग्लोबल इन्वेस्टर हमारे पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम एक ट्रस्टवर्दी नेशन, हम एक ट्रस्टेड सोर्स के रूप में उभर रहे हैं कि अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है तो भारत एक सेंट्रल अपनी रोल निभा सकता है और सबका विश्वास है हमारे साथ। जैसा हमारा प्रिंसिपल भी था सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, तो पूरे विश्व ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया है, इन्वेस्टमेंट की बात की है भारत में और यहीं से बाकी प्रचार प्रसार का भविष्य भी दिख रहा है।
रोनेन्द्र जी, अगर भारत में AI को मजबूत बनाने की बात करें तो टैलेंट, डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन अहम इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं। इन तीनों के क्षेत्र में भारत को आप कैसे देखते हैं? डेटा का सबसे बड़ा सेंटर भारत है, दुनिया चीन के बाद भारत की तरफ देख रही है। AI को अगर डील करना है तो टैलेंट का जो पूल बनाना है, उस पर प्रधानमंत्री ने भी बात की, उस दिशा में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है, और जब बात डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं तो उस दिशा में क्या तैयारियां हैं?
तैयारी की बात की जाए तो अभी AI में हमारी तैयारी हम कह सकते हैं कि उतनी है नहीं, लेकिन जिस तरह के जो अभी तक प्रपोजल्स आए हैं, चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन हो या हमारे देश के ही रिलायंस और उनके होम ग्रोन जो रिलायंस और जियो है, वो अपना यहाँ पे AI ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेटा सेंटर्स और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने जा रही है। जो समिट में जो आए थे ग्लोबल हेड्स, इंक्लूडिंग गूगल के CEO सुंदर पिचाई आए थे, जैसे OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन आए थे, मेटा के AI हेड अलेक्जेंडर वैंग आए थे, तो ये सब जो इसलिए आए थे कि देखने के और बताने के लिए कि हम लोग भारत में क्या क्या कर सकते हैं। डेटा सेंटर हो गया, इन्होंने वाइजक में गूगल ने जैसे अपना डेटा सेंटर लगाने की बात की, अब सबसी केबल के थ्रू भी अपना डेटा अपना वो यहां से ट्रांसफर करके यहां पे यूटिलाइज करना चाहते हैं, ताकि भारत जो है बिल्कुल एक सेंटर पर रहे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे फॉर AI इन द फ्यूचर। और इसी कारण ये है कि काफी जो टैलेंट पूल है वो भी अभी भारत से उभरने की आशा रखते हैं। गवर्नमेंट जिस तरह से AI लैब्स बना रही है, जैसे इंस्टीट्यूट में ग्रास रूट लेवल से जो स्टार्ट करना चाह रही है, इसी के लिए करेगी ताकि हम लोग जो है एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे AI इन फ्यूचर।
जी हाँ बिल्कुल, और AI इम्पैक्ट समिट ने कई क्षेत्रों में सफलता के परचम लहराए हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को, जो AI इम्पैक्ट समिट के सफल समापन पर क्या कह रहे हैं।
अगर हम पार्टिसिपेशन पे देखें तो अबाउट मोर देन 5 लाख विजिटर्स हैव एंजॉयड दिस एग्जीबिशन, लर्न अ लॉट, इंटरेक्टेड विद मेनी एक्सपर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड। वी हैड प्रैक्टिकली एवरी major AI player in the world participating in large numbers. We had so many startups getting the opportunity to showcase their work. Overall, the quality of discussion was phenomenal. If you look at the ministerial dialogue, the leaders plenary, the main inauguration function, the summit, the quality of participation, the quality of dialogue was phenomenal. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Manav AI, which is AI of the humans, by the humans, for the humans.
तो सुन जी, जो डेटा सुरक्षा है और नैतिकता जैसे मुद्दे सबसे अहम रहते हैं, भारत ने उस दिशा में भी काफी पहल की। इस एआई इंपैक्ट समिट के बाद आपको क्या लगता है कि जो डेटा प्रोटेक्शन को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं चल रही हैं, आकाशवाणी के जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी जानना समझना चाहते हैं आप जैसे टेक विशेषज्ञों से कि एआई जब हमारे और आपके जीवन में इतना शामिल हो रहा है तो क्या हमारा निजी डेटा सुरक्षित होने वाला है, और इस दिशा में भारत सरकार और दुनिया के अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या टेक एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, और इस समिट में क्या उस विषय पर भी कोई चर्चा हुई?
देखिए, इस समिट में चर्चा हुई, और ये जब भी हम एआई की बात करेंगे तो डेटा सुरक्षा हमारा सबसे सर्वोपरि रहेगा हर चीज में। हर देश, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा जिसका डेटा उसका अधिकार, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा डेटा पहले क्या होता था कि बाहर जा रहा है, कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है, किसके हाथ में जा रहा है, वो सब चीजें बात होती थी। अब जब हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हिंदुस्तान में लागू कर दिया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज चल रहा है, तो इससे काफी सुरक्षा मिलेगी। पहले क्या होता था कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं विदेश का, आप गूगल प्ले स्टोर पे हैं या एप्पल के स्टोर पे हैं, तो उसको भेजना होता था आपको, जैसे कैलकुलेटर है लेकिन वो कहता था कि हम आपके फोन को भी एक्सेस करेंगे, मोबाइल फोन का, हम आपका कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर जैसी चीज को क्या जरूरत है एक टॉर्च जलाने की, या फिर आपका फोन सुनने का, या फिर आपका कुछ भी जो उसके काम का नहीं है वो सब चीजें एक्सेस करने का। तो इससे क्या होता था, काफी लोग जानते नहीं थे कि वो क्या चीज डाउनलोड कर रहे हैं, और वो बाहर की जो संस्थाएं होती थी, कई बार साइबर क्रिमिनल भी होते थे, वो डेटा आपकी आवाज सुन करके, आपकी बात सुन करके, आपका SMS एक्सेस करके उसका फायदा उठाते थे। अभी भी ये चीजें चल रही हैं, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हिंदुस्तान में भी है, यूरोप ने भी अपना कानून लगाया है डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, कई देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में ये है कि आपने कुछ भी कहा हो लेकिन अगर आप कानून संगत नहीं है कि आपने जिस पर्पस के लिए हमारा डेटा इस्तेमाल किया है आप उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, तो आपको सजा मिलेगी। सजा का प्रावधान है DPDP एक्ट में, मतलब कि अगर कैलकुलेटर आपने डाउनलोड किया और वो हमारा फोन सुनने का परमिशन ले रहा है और हमारी बात सुन करके वो कुछ कर रहा है जिसका उसके फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो वो उसको सजा मिलेगी। हमको हमेशा इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम टिक लगा रहे हैं, पहली बात तो हमें अपनी तरफ से देखना पड़ता है कि हम सब चीज अप्रूव ना करें। अगर अप्रूव कर भी रहे हैं तो आगे प्रावधान है कि भाई आपने क्यों इसका इस्तेमाल किया, और ये सारा डिजिटली हैंडल होगा। ये कोर्ट कचहरी आपको जरूरत पड़ेगी तो बाद में जाना होगा, लेकिन शुरुआत में आप कंप्लेंट डिजिटली आप फाइल कर सकते हैं, घर बैठे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकेंगे। तो सुरक्षा के काफी प्रावधान है, क्लियर प्रावधान है कि कोई भी मिसयूज नहीं करेगा जिस चीज का उसका काम नहीं डेटा का उसको लेकर के।
कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का AI टैलेंट पूल 33% की दर से बढ़ रहा है। ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म भारत में उनके मासिक यूजर्स 14.5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। 69% कंपनियां इस वर्ष AI में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं। 80% कंपनियां AI को प्राथमिकता दे रही हैं, जबकि ये वैश्विक औसत 75% का है। इन डेटा के बाद रोनेन्द्र जी, जो आपसे सवाल है कि आज दुनिया में AI की दौड़ में अमेरिका, चीन और यूरोप भारत से पहले से ही आगे हैं, ऐसे में आप भारत की स्थिति कहां देखते हैं अभी, और जब हम AI के सहारे ग्लोबल साउथ और दुनिया को लीड करने की दिशा में सोच रहे हैं तो वहां हमारी क्या स्थिति है?
आपकी बात सच है कि तो हमसे वो आगे हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं हम उनसे पीछे भी नहीं है, क्योंकि हमने जो पिछले 1-2 साल में देखा है, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई हमने उसे वैसे बहुत बढ़िया तरह से एक्सेप्ट किया गया है, और आज के डेट में हम देख भी सकते हैं, जैसे आपने जैसे ChatGPT का एग्जांपल दिया, और आपको गूगल और मेटा को तो पता ही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है हमारी जिस तरह की यूसेज है। तो भारत की सबसे बेस्ट बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी को आने से नहीं रोकते। कुछ कंट्रीज में होता है कि नहीं, हम अपनी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे और दूसरे कंट्रीज का हम अंदर आने नहीं देंगे, और उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज और रेगुलेशंस भी बनाते जा रहे हैं। जैसे प्रसून जी ने भी कहा, DPDP एक्ट हो गया हमारा, या जैसे AI में अभी गाइडलाइंस हो गया। सो हमारी सरकार भी कहती है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हम लोग उसको अभी डायरेक्टली नहीं लेके आएंगे AI के लिए स्पेशली, जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे टेक्नोलॉजी हम मतलब विल गो ऑन अ टेक्नोलॉजिकल वे। सो गवर्नमेंट का भी फिलहाल यही है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल के माध्यम से ही इसको देखेंगे, और जब जब जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से ऐसे रेगुलेशंस लेके आएंगे जो उस टाइम के मुताबिक इम्पैक्ट पड़ता है। सो एक वो वैसे भी एक वेलकम स्टेप है, और जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने भी रखा है कि हम टेक्नोलॉजिकल वे के थ्रू हम लोग अप्रोच में जाएंगे।
प्रसून जी, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग हैं जो AI इम्पैक्ट समिट में शामिल नहीं हो पाए, जिन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से AI इम्पैक्ट समिट की जो कवरेजेस उन्होंने देखी, जो विजुअल्स देखे, जो रिपोर्ट्स पढ़ी सुनी, इन सब के बाद वो ये जानना चाहते हैं कि उनका जीवन AI से कैसे बदलने वाला है, उनके पास बहुत ज्यादा तकनीक की सुविधा नहीं है। ब्रॉडर वे में अगर हम बात करें तो एआई समाज के उस अंतिम छोर के व्यक्ति को जीवन को कैसे बदलने वाला है जिसके लिए एआई आज भी तीसरी दुनिया की चीज की तरह है।
सबसे पहले मैं आपको कृषि का एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बहुत लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी क्या होता है कि एक किसान जाता है, अपनी आंखों से देखता है कि फसल में क्या हो रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, फसल का पत्ता पीला पड़ रहा है या खाद में कोई रंग में बदलाव है, उसको समझना पड़ता है, पूछना पड़ता है या तजुर्बे से जो गांव में आसपास लोग हैं वही बता सकते हैं। आने वाले समय में अभी हम देख रहे हैं जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है तो ऐसे स्कैनिंग हुआ करेगी खेतों की, एक ही बार में स्कैन कर दिया वो बता देगा कि आपके फसलों में ये दिख रहा है, इस तरह से पीला पड़ रहा है या फिर कोई कीड़ा लगने की संभावना है तो आप इसका उपाय इस तरह से करें। तो वो बस फोन पे अपने मिलाएगा कि हमारे लिए आज क्या चेतावनी है और उसको ये सुविधा मिल जाएगी। दूसरी चीज अभी क्या है कि आप उत्तर प्रदेश वाले हैं या मध्य प्रदेश वाले हैं, अधिकतर हिंदी भाषी हैं, तो हम लोग जैसे कर्नाटका में किसी से बात करनी हो, तमिलनाडु में किसी से बात करनी हो तो हम लोग उनकी भाषा नहीं जानते, कई लोग वहां की भाषा हमें नहीं जानते हैं, एक अंग्रेजी के माध्यम से काफी लोग जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो गांव देहात में रहते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल सकते लेकिन अपनी भाषा में चैंपियन है वो भाषणी जैसा ऐप आएगा तो उसके मदद से वो अपनी भाषा में बोलेंगे, बीच में एक ऐप उसको ट्रांसलेट करके अगर वो मलयालम में बात कर रहे हैं किसी से, केरला में बात कर रहे हैं तो मलयालम में वो भाषा को बता देगा। तब आप सोच लीजिए कितनी सहज है कि आप वो भाषा का जो हमें रोक लगता था कि हम कैसे बात करें, उनसे कैसे बात करें, कहीं घूमने गए तो कैसे बात करें, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। इससे जो है जब बातचीत होती है तो व्यवसाय बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, आपस में मेलजोल बढ़ते हैं, तो एक बहुत बड़ा सा बदलाव इस तरह से आया कि हमारे भाषा का प्रतिरोध नहीं है, किसान को मदद मिलेगी कि हमारी फसल कैसे हो रही है, एक नजरिए से स्कैन होगा, आधे एक मिनट के अंदर पता चल जाएगा समस्या क्या है, आगे जो इलाज होता है कई जगह इलाज नहीं पहुंच पाता है, तो एआई की मदद से काफी जो वहां पे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उन सबको एआई के माध्यम से पता चल सकेगा हाँ ये समस्या हो रही है, इस तरह का कोई वायरस आ रहा है, इस तरह की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, तो वो इलाज भी अच्छे में करेंगे। पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई में जैसे अभी आप क्या होता है गुरुजी हमारे एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, एक बनाएंगे, दो बनाएंगे, फिर हर बार अलग अलग बनाते हैं। एआई के माध्यम से बच्चा जब अपने कंप्यूटर में लॉगिन करेगा या मोबाइल में लॉगिन करेगा जहां पे उसका पढ़ाई का ऐप है तो वो टाइमिंग देखेगा कि किस टाइम लॉगिन कर रहा है, किस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, उस हिसाब से सवाल निकाल के दे देगा और उसके हिसाब से, तो वो जो मैन्युअली लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है बच्चे को किस तरह का हम पढ़ाएं, वो सब चीजें एआई से आसान हो जाएगी। कई कंपनियां अपने खर्चे बचाने का सोचती हैं कि भाई एआई आ रहा है तो हमारे यहाँ कोडर प्रोग्रामिंग नहीं, और कई कंपनियां फोर्स मल्टीप्लायर की तरह देखती हैं। तो बहुत सारी हैं, अनगिनत बातें हैं, लेकिन संक्षेप में मैं इतनी बातें बताऊंगा जिससे उनको समझ में आए कि किस तरह का बदलाव आने वाला है। भाषणी ऑलरेडी एक्टिव है कई जगह पे अब।
जी बिल्कुल, टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत एआई की दिशा में काफी निवेश कर रहा है और आने वाले समय में इस दिशा में बड़ी प्रगति देखी जा सकती है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
इंडिया इज अ नेशन ऑफ एआई ऑप्टिमिस्ट्स। आवर एंथुसियाज्म इज नॉट सरप्राइजिंग। इंडियंस हैव विटनेस्ड द ह्यूजली एम्बिशियस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स एंड व्हाट दे कैन अचीव। द लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम इन द वर्ल्ड covering 1.4 billion people, a digital payment interface that accounts for half of the entire world's transactions. Over the past few years, under our Prime Minister's vision, India has treated AI as a strategic national capability, aligning the full stack from chips to systems to energy and to applications. Through Semicon India, an India AI mission, and most importantly, the recent reforms such as the Shanti Act for clean energy, we are building AI at scale with trust, resilience and long-term competitiveness.
AI Impact Summit को सात चक्रों में बांटा गया था और ये सात चक्र थे सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन, मानव पूंजी, सुरक्षित और विश्वसनीय AI, लचीलापन, नवाचार और दक्षता, विज्ञान, AI संसाधनों का लोकतांत्रिकरण और आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए AI। रोनेन्द्र जी, जब भी एआई की बात होती है तब तीन क्षेत्र जो हैं वो सबसे ज्यादा सामने आते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और प्रसून जी भी कह रहे थे कि किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है अगर वो इसको लेकर अवेयर हो। दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत की अगर तुलना करें तो भारत मेडिकल टूरिज्म का भी बहुत बड़ा हब है। क्योंकि दुनिया के कई देशों के लोग भारत में आते हैं, क्योंकि यहां का इलाज सस्ता भी है और बेहतर भी है। एआई के प्रभाव को आप स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में किस तरह देख रहे हैं?
भारत को एआई में मजबूत बनने के लिए इन तीनों चीजों की आवश्यकताएं होंगी, जैसे टैलेंट हो गया। अब टैलेंट में ये है कि आगे जो एआई में जो ऑपरेशन होंगे या जो टेक को हैंडल करने वाले होंगे, उसके लिए भी टैलेंट की जरूरत होगी, और उसी टैलेंट को हम लोग बनाने के लिए, टैलेंट पूल को बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रास रूट लेवल से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट ने भी ऑलरेडी अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करने के लिए 300 से ज्यादा इंस्टीट्यूट और एआई लैब्स बना चुके हैं, जो कि आगे आने वाले समय में 570 से ज्यादा हो जाएंगी, स्पेशली इंक्लूडिंग टीयर टू और टीयर थ्री टाउन्स में। ये सिर्फ क्योंकि शहरों में नहीं हो रहा, ये गांव गांव में और टीयर टू टीयर थ्री जैसे छोटे शहरों में भी जाके हम लोग अपना टैलेंट जो पूल है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। सो गवर्नमेंट का जो फ्यूचर स्किल्स इनिशिएटिव है, उसी के अंतर्गत ये सब टैलेंट हम आगे हम लोग करने जा रहे हैं। और दूसरा है डेटा, जो कि एक अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग एआई के इस्तेमाल करेंगे उतने ज्यादा हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहले भी हम बोलते जा रहे हैं कि यू नो डेटा इज द न्यू ऑयल इन दिस यू नो वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए वो जो डेटा जो सेंटर को इसलिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अभी कुछ समय लगेगा, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे डेटा सेंटर और बनते चले जाएंगे इंडिया में। और तीसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी से रिलेटेड है, चाहे वो आपका डेटा सेंटर हो या जीसीसी जो यहाँ पे ग्लोबल सेंटर्स बना रहे हैं कंपनीज, उसी के अंतर्गत आएंगे। और ये सब जो है ऑलरेडी हमारे कुछ हॉस्पिटल, जैसे प्रसून जी ने भी कहा, हमारा ऑलरेडी हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, कृषि फार्मर्स के उसमें यूटिलाइजेशन के लिए ऑलरेडी एआई जो है बहुत मदद कर रही है इनको।
जी हाँ बिल्कुल, एआई इंपैक्ट समिट में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों और कई टॉप कंपनीज के सीईओ ने भी हिस्सा लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने समिट में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
इंडिया बिल्ड समथिंग दैट नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज बिल्ट, अ डिजिटल आइडेंटिटी फॉर 1.4 बिलियन पीपल, अ पेमेंट सिस्टम दैट नाउ प्रोसेसेस 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस एवरी मंथ, अ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज इश्यूड 500 मिलियन डिजिटल हेल्थ आईडीज। Here are the results. They call it the India Stack, open, interoperable, sovereign. That difference is what this summit is about. We are clearly at the beginning of a huge acceleration.
प्रसून जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम एआई और भारत के भविष्य के लेकर चर्चा करते हैं, तो इसमें सरकार के साथ साथ आप निजी क्षेत्र की कितनी भूमिका देखते हैं, स्टार्टअप की कितनी भूमिका देखते हैं, और कुछ वैसे इंडिविजुअल्स जो एआई को लेकर काफी ज्यादा सोच रहे हैं और ज्यादा इनोवेशन करने की भी देख रहे हैं। हमने देखा कि एआई इंपैक्ट समिट में कई कम उम्र के युवाओं ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया।
जी हाँ, अब सरकार एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रही है और समय पे निर्णय ले रही है, सबसे बड़ी बात। पहले क्या होता था, देखते थे हम लोग कई साल तक डिमांड रखी जा रही है कि हमको ये तकलीफ हो रही है, कई बार इंडस्ट्री भी, कई कंपनियां भी बंद हो जाती थी, लेकिन समय पे एक्शन नहीं होता था। जैसे कि जब हमने ITA 1 WTO का साइन किया तो कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो गई थी और समय पे हमने उसका निदान नहीं निकाला। लेकिन अब समय पे काम हो रहा है और सरकार थोड़ा सा आगे चल रही है। जैसे अगर आप बजट देखें तो 2047 तक टैक्स हॉलीडे दे दिया गया है डेटा सेंटर को लेकर के। अब आप समझ जाइए 2047 तक अगर हो रहा है तो हमने कितनी सारी चीजें एडवांस कर दी। एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, बोला गया था कि एआई हमारे जो इकोनॉमी है उसमें 500 बिलियन के आसपास ऐड करेगी 2035 तक। अगर आप देखें तो 250 बिलियन का तो कमिटमेंट अभी मिल चुका है और 70 बिलियन पहले हो चुका है, कुछ इन्वेस्टमेंट उसके भी पहले थे, तो करीब 300-400 के लगभग बिलियन का कमिटमेंट तो ऐसे ही हो रखा है। 2035 तो बहुत दूर है, तब तक हम पता नहीं क्या कर लेंगे। जहां तक आपने बात की स्टार्टअप के ऊपर, तो 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंडिंग का प्रपोजल आया है इंडियन स्टार्टअप में किए जाएंगे। 20 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। स्टार्टअप को क्या चाहिए कि वो अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर सके, उनको रिसर्च का रिसोर्स मिल सके। और भारत सरकार ने भी क्या किया है, जैसे एआई का डेवलपमेंट का कॉस्ट होता था, अभी ChatGPT वगैरह ये सब सर्विसेज फ्री हो गई हैं, तो नहीं तो पहले $20 का इनका सब्सक्रिप्शन आता था। $20 आप समझ लीजिए हो गया 1800 रुपये करीब। अभी क्या है, सरकार ने कहा है कि आप 65 रुपया हमको दीजिए टोकन के हिसाब से और आप GPU एक्सेस करिए। नहीं तो GPU का कॉस्ट हमारा बहुत ज्यादा होता था तो प्रोडक्ट नहीं बन पाते थे। अगर हमारी लागत किसी टेक्नोलॉजी को, किसी ऐप को बनाने में बहुत ज्यादा लग रही है तो हमको रिटर्न भी उसी हिसाब से कम मिलेगा। तो सरकार ने ये समझा कि स्टार्टअप को अभी सस्ते दरों में अगर हम रिसोर्स प्रोवाइड करा दें तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। और नतीजा क्या हुआ कि हमारे पास अभी 3 हमारे सोवरेन AI मॉडल जिसको कहा जाता है, इसमें सबसे आगे सर्वम है, जैसे ChatGPT अभी सब लोग इस्तेमाल करते हैं, जेमिनी इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह सर्वम जैसी कंपनी आ गई है, आप हिंदुस्तान का विकल्प आ गया है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनोवेशन स्टार्टअप की तरफ से भी हो रहे हैं और सरकार पूरी मदद कर रही है उनको जो चाहिए, क्योंकि इस बार निश्चय है कि हमको करके दिखाना है, हमको पीछे नहीं रहना है, हमको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, हमको आत्मनिर्भर बनना है।
जी हाँ बिल्कुल, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में और क्या कुछ खास रहा, आइए सुनते हैं श्रेया पाठक की इस रिपोर्ट में।
भारत मंडपम में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 से अधिक वैश्विक AI विशेषज्ञ भाग ले रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी भारत मंडपम में संवाददाताओं से बातचीत की और भारत के AI मिशन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने AI के अनुकूलन यानी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लिए जा रहे कदमों की भी बात रखी। इस समिट का उद्देश्य था कि विश्व भर में AI पर जो चर्चा हो रही थी उसे केवल विचार विमर्श तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे धरातल पर और विकास के परिणामों में बदला जाए। इस तरह के प्रयास को हम AI इंडिया मिशन और डिजिटल इंडिया की भारत की पहल में देख सकते हैं, जो इस AI इम्पैक्ट समिट में भी दूसरे देशों के लिए एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया, जिससे AI का उपयोग देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में ठोस रूप से हो सके। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कृत्रिम मेधा का एक समग्र सम्मेलन कहा जा सकता है। यह AI को संवाद से आगे बढ़कर ठोस परिणामों तक पहुंचाने की एक व्यापक पहल थी। यह सम्मेलन भारत को जिम्मेदार, समावेशी और विकास में AI के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है।
रौनेन्द्र जी, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में एक सवाल आपसे समझना चाहेंगे बहुत संक्षेप में कि आने वाले 5-10 वर्षों में AI के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आप बदलते हुए देख रहे हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि आपको कौन कौन से सबसे बड़े बदलाव देखने की उम्मीद है आने वाले वर्षों में?
3 सेक्टर्स है, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर। इन तीनों इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी हम लोग AI के इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं और हम लोग ने काफी बदलाव भी देखे हैं। जैसे आप कृषि सेक्टर में देखोगे तो देखेंगे कि AI के थ्रू हमारे जो किसान भाई लोग हैं इतने सारे ऑलरेडी मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि उनको फसल काटने का बेस्ट टाइम कैसे पता लगे, कीड़े लग रहे नहीं लग रहे उससे पहले ही उनको पता लग जाता है, वेदर के फोरकास्ट भी पहले AI के थ्रू उनके मोबाइल में बताया जाता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग अचीव करने जा रहे हैं। और एजुकेशन सेक्टर में भी, चाहे वो पढ़ाई लिखने में हो, एग्जाम में भी, जैसे अभी प्रसून जी ने भी कहा, इन सब में हम लोग ऑलरेडी हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं और फ्यूचर में भी इन 3 सेक्टर्स में हम लोग बढ़ोतरी करेंगे AI में सबसे पहले।
रौनेन्द्र जी आपका, प्रसून जी आपका इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद आनंद।
धन्यवाद।
तकनीक का इतिहास हमें ये बताता है कि हर बड़ी क्रांति की शुरुआत किसी एक विचार से होती है। कभी बिजली ने दुनिया बदली, कभी इंटरनेट ने सीमाएं घटाई और आज वही भूमिका निभा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट ने यह संकेत दे दिया है कि डिजिटल भविष्य की इस नई यात्रा में भारत सिर्फ एक सहभागी नहीं बल्कि एक संभावित मार्गदर्शक भी बन सकता है। नवाचार, सहयोग और तकनीकी नेतृत्व, यही वे 3 स्तंभ हैं जो आने वाले वर्षों में वैश्विक डिजिटल व्यवस्था को आकार देंगे और शायद यही कारण है कि दुनिया की निगाहें आज भारत की पहल पर टिकी हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप सभी का आभार, नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 विश्व के तकनीकी और डिजिटल भविष्य में भारत की अहम भूमिका पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रौनेन्द्र सिंह और प्रसून श्रीवास्तव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
चर्चा का विषय है